घर से विदा होकर वीणा अरुण के संग मधुबन होटल में आ गई। आगे का कार्यक्रम वहीं से तय होना था। मधुबन होटल में प्रेम ने पहले से ही दो कमरे बुक करवा रखे थे। एक में वीणा व अरुण रुक गए और दूसरे में अरुण का मित्र सुनील व मां कलावती ठहर गए। यह सादगी पूर्ण परिणय बंधन वीणा के पिछले दिनों से बिल्कुल विपरीत था। कोई बहू के स्वागत के लिए नहीं था, ना ही गृह प्रवेश की रस्म थी, ना कोई मंगल गीत, ना आरती उतारी किसी ने। सास साथ ही थी पर उसकी उपस्थिति ना के बराबर थी। जो अरुण को समझ आ रहा था वही वह करवा रहा था अपने मित्र से कहकर। हां, उसका फोटो सेशन बहुत लंबा चला। वीणा के संग उसने लगभग 2 रील तस्वीरें खिंचवाई। शादी के इन पलों को वह संजो कर रखना चाहता था। रीति रिवाज की उसे जानकारी ना थी और ना ही कलावती कोई रीति रिवाज निभाना चाह रही थी। वीणा अपने में ही खोई हुई थी और अपनी उपस्थिति मुस्कुरा भरकर पूरी कर रही थी। रात का खाना खाने के समय प्रेम व सुनीता भी आ गए थे। सबने एक साथ खाना खाया और वहीं तय हुआ कि वे लोग कल सुबह दिल्ली वापस लौट जाएंगे। खाना समाप्त कर प्रेम व सुनीता ने उनसे विदा ली और अरुण उन्हें नीचे छोड़ने आया। रिसेप्शन काउंटर के पास रुककर उसने प्रेम से एकाएक पूछ लिया, प्रेम, यहां का बिल क्या तुमने अदा कर दिया है या कि सुबह तुम आओगे? प्रेम को कुछ अटपटा सा लगा, एकाएक अरुण का पूछना, और ऐसे में वह बस इतना ही कह पाया, इसकी आप चिंता ना कीजिए, मैं सब स्वयं कर लूंगा। ऐसी बात नहीं है प्रेम, मैंने बस अपनी जानकारी के लिए पूछा है, मैं सुबह स्वयं पूछकर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। अरुण ने अपनी बात सफाई से कह दी। पहले तो उसने पूछा, फिर स्वयं ही अपने प्रश्न का खुलासा किया, लेकिन प्रेम शिष्टाचार में फिर से बोला, यह सब आप मुझ पर छोड़िए, मैं सुबह 9 बजे आपको यहीं मिलूंगा। इससे आगे बात यहीं समाप्त करते हुए प्रेम ने कहा, अब आप आराम कीजिए, सुबह से थके हुए हैं, और अरुण से हाथ मिलाकर उसने विदा ली। सुनीता इस बीच कुछ नहीं बोली, बस अरुण को निहारती रही। शादी दो आत्माओं का मिलन है। संयोग जब बनता है तो सात समंदर पार से भी रिश्ता जुड़ जाता है। एक सप्ताह पहले कोई अरुण को जानता भी ना था और एक सप्ताह बाद वह घर का सदस्य बन गया है। यह रिश्ता बनाने कनाडा से चलकर अरुण का आना जैसे निश्चित था। सुनीता कुछ ऐसी ही बातें सोचती है। घर में सभी उसे मजाक में दादी मां भी कहते हैं। कमरे में लौटकर अरुण ने देखा, वीणा पर्दा हटाकर बाहर जगमगाती मसूरी की सुंदरता को देख रही थी। देहरादून से मसूरी और मसूरी से देहरादून की छटा रात को देखने से ऐसा लगता है कि एक आकाश गंगा ऊपर है और दूसरी यहां धरती पर। लेकिन अरुण को इस समय ना ऊपर की आकाश गंगा दिख रही थी और ना दूर मसूरी की जगमगाती रोशनी से आनंद आ रहा था। वह तो वीणा को अपने निकट देखकर असीम आनंद की अनुभूति पा रहा था। वह चुप बैठी वीणा को एक टक निहारने लगा। कितनी सुंदर थी वह, बड़ी बड़ी सी आंखें, लंबी पतली नाक, सुंदर ऊंट, कुल मिलाकर एक आकर्षक चेहरा, देखने वाला एक टक देखता रह जाता। वीणा ने एक नजर अरुण की ओर देखा। उसे स्वयं को देखते पाकर वह लजा गई और अपनी आंखें नीची कर ली। उसने हल्के से मुस्कुराने की चेष्टा की। अरुण ने इसे आमंत्रण समझकर उसका चेहरा उठाया, उसकी आंखों में झांकते हुए उसने कहा, मैं जब कनाडा से आया था तो सपने में भी उम्मीद ना थी कि तुम जैसी सुंदर लड़की मुझे अपनी पत्नी के रूप में मिलेगी। आज मुझे अपनी किस्मत पर नाज है, तुम्हें अपने साथ पाकर भूल गया हूं कि मैं 15 वर्षों से बिल्कुल अकेला हूं। अरुण ने अपनी हथेलियों में ले लिया था वीणा के चेहरे को। वीणा भी एक टक देख रही थी अब उसको, लेकिन वह बोली कुछ भी नहीं। अरुण ने उसे देखते हुए फिर कहना शुरू कर दिया, तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन अजीब सा लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें खुश रख सकूं, और खुश रख सकूंगा तभी जब तुम अपने बीते दिनों को भूल जाओगी और मेरे साथ आने वाले हर पल का सुख भोग सकोगी। उसकी बात सुनकर वीणा की पलकें भीग आई थी। वह कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसके होठ फड़फड़ा कर रह गए। अरुण को लगा कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तब उसने कहा, ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और वीणा विश्वास रखो, आगे से ऐसा कुछ ना कहूंगा। यह कहकर अरुण ने उसके गालों को थपथपाया और हाथ हटाते हुए बोला, चलो उठो, अब चेंज कर लो। वीणा उठने को हुई, तब अरुण ने फिर कहा, मैं पिछले 15 वर्षों से अकेला हूं कनाडा में, मेरे अकेलेपन का साथी नहीं मिला मुझे। तुम मिली हो इतने वर्षों बाद, तो अब लगता है जीवन में अकेलेपन की घड़ियां अब फिर से नहीं आएंगी, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि तुम भी कोई कमी महसूस नहीं कर सको। वीणा मुस्कुराकर बाथरूम में चली गई और अरुण बैठ गया उसी कुर्सी पर जहां वीणा बैठी बाहर देख रही थी। एकाएक जीवन बदला सा महसूस हुआ उसे। एकाकीपन में कभी सोचा भी न था उसने, बस दिन रात काम में डूबा रहता था, पैसा कमाने और पैसा जोड़ने की धुन में मस्त रहता था। घर बसाने की बात तभी उसके मन में उठती थी जब वह 2-4 महीने में एक बार मां से फोन पर बात करता था। वही कहती थी, उम्र बीतती जा रही है, अब घर बसाने की सोच लो, यहां आकर लड़की ढूंढ लो, या फिर वहीं किसी गोरी मेम से शादी कर लो। अरुण हां सोचूंगा कहकर बात समाप्त कर देता था। बार बार सोचता था, भारत जाऊंगा, वहीं से अपनी दुल्हन लाऊंगा, यहां गोरी मेमों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, दोस्ती तक सब ठीक है, घर बसाने के लिए संस्कारों वाली लड़की चाहिए, संस्कार क्या, अपनी सोच जैसी लड़की चाहिए। मनुष्य की जैसी सोच होती है वैसे ही उसके संस्कार बन जाते हैं। कनाडा में रहते हुए भी उसके संस्कार पूर्णतः भारतीय ही थे। पूर्ण रूप से शाकाहारी, मदिरा से दूर रहने वाला, सभी उसे पंडित जी कहते थे। ऐसे में उसे वहां कनाडा में गोरी मेम से पटरी बैठती नहीं दिखती थी। भारतीय मूल के लोगों में भी उसे अपनी सोच के अनुरूप कोई जंचती नहीं थी। हां, एक तो पसंद आई उसे, लेकिन उन्हें वह पसंद नहीं आया। कसरती शरीर, लंबा चौड़ा डील डॉल, और उस पर रंग भी उसका गहरा सांवला था, आवाज भी कड़कदार। काम के लिए तो संबंध सभी रखते थे, मौज मस्ती के लिए सभी मिल जाते थे, लेकिन घर बसाने की बात पर कोई नहीं मिल पाया। संयोग से मिली थी वीणा, तभी इतने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। एकाएक उसे लगा जैसे उसकी जन्मभूमि उसे बुला रही है। 15 साल का प्रवास जैसे पूरा हुआ उसका, 1 महीने का प्रोग्राम बना लिया, आने से पहले अपने कॉलेज के मित्र से बात कर ली, एक वही था सुनील, जिससे उसका पत्र व्यवहार हो जाता था। उसी ने अरुण के आने से पहले अखबार में विज्ञापन दे दिया था अच्छी लड़की का। उम्र आड़े आ रही थी, उसी को गोलमोल कर गए। अच्छी लड़की चाहिए, चाहे विधवा हो चाहे तलाकशुदा, बस बाहर चलकर रहने को राजी हो। एनआरआई की छाप बड़ा महत्व रखती है और अरुण तो अब भारतीय मूल का कनाडा का नागरिक था। एक समस्या और भी थी, देश लौटकर मां के पास रहने की समस्या। वह तो एक कमरा किराए पर लेकर अकेली रहती थी। पति से कानून की लड़ाई लड़ रही थी पिछले 20 वर्षों से। अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए भाइयों से भी मदद नहीं मांगती थी। दोनों खानदान दिल्ली के नामी गिरामी रईसों के थे, लेकिन मां थी कि गुमनामी की जिंदगी जीती थी। ऐसे में अरुण ने ही मां को समझाया कि उसकी शादी की खातिर वह कुछ दिन तक उसके मामा के घर पर ही रह ले। मां कैसे रहती है, कैसे पीछे के दिन बिताए, इसकी सोच उसके मस्तिष्क में नहीं आती थी। बस कर्तव्य मात्र इतना समझाया था कि साल 6 महीने में 1,000-2,000 डॉलर वह मां को जरूर भेज देता था। अब शादी करने की इच्छा बलवती हो रही थी तो यह सब बातें उसके लिए मायने रखती थी। मां को तो पिछले 15 सालों में शायद 15,000-20,000 डॉलर भेजे थे उसने, परंतु मामा मामी के लिए जरूर बेशकीमती उपहार लाना नहीं भूला। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, कितने भी रईस क्यों ना हो हम, जब कोई बहुमूल्य उपहार लाता है तो मन बाग बाग हो उठता है। अरुण जब पहुंचा तो चिट्ठियों का ढेर लगा था। वीणा की चिट्ठी उसे जंची और उसने तुरंत उसका जवाब भेज दिया। मिलने की इच्छा जताई और ऐसे में चट मंगनी पट शादी हो गई। अरुण परिणय बंधन में बंध गया। वीणा की बीती जिंदगी की दास्तान सुनकर उसे लगा यही वह लड़की है जो उसकी सोच का संबल बन सकती है, यही वह लड़की है जो उसके देश में उसके परिवेश में ढल जाएगी। परिणय सूत्र में बंधने का समय आ गया था उसकी जिंदगी में, और ऐसे में चंद दिनों में उसकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। मन बाग बाग हो उठा वीणा को अपने जीवन में पाकर। अरुण की तंद्रा भंग हुई, उसे देखकर अरुण कुर्सी से उठा और उसकी ओर बढ़ गया। वीणा को पाकर वह भाव विभोर हो उठा, जीवन में उसके नई बहारें आ गई, ऐसा एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। वीणा को अपनी बाहों में लेकर वह मस्त मदहोश हो गया। रात के 2 बज रहे थे जब वीणा की आंख खुली। उसके पहलू में अरुण सोया हुआ था। एक नजर अरुण पर डाली उसने, फिर खुद को देखने की चेष्टा की उसने, शर्मा गई अपने को देखकर। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अरुण की बाजू धीरे से हटाकर वह करवट बदलकर लेट गई। अब उसकी आंखों के सामने खिड़की थी और खिड़की के बाहर उसे तारों भरा आकाश दिख रहा था। वीणा की नजर और नहीं झटकी, उन्हीं तारों में से एक तारे पर ठिटक कर रह गई। बहुत चमक रहा था वह तारा। उसे वह तारा अपनी आंखों के निकट आता दिखाई दिया। बहुत दिनों बाद उसे लगा यह रात अच्छी है, यह तारे उसके साथी हैं, और सबसे अलग उसे यह सोचकर भी अच्छा लगा कि इन तारों को देखकर अब वह मुस्कुरा सकती है। वह मुस्कुराई भी और फिर से एक नजर अरुण पर डाली। वह एकटक उसे देखने लगी। अरुण सो रहा था, सांसों की आवाज आ रही थी। शरीर से भारी था अरुण, सांवला था, बिना चश्मे के इस समय चेहरा वीणा को अनजान सा लगा, आकर्षणहीन। एकाएक न केवल वीणा की मुस्कुराहट लुप्त हो गई, बल्कि वह उदास हो गई, भूल गई कि अभी कुछ देर पहले इसी व्यक्ति ने उसे शारीरिक सुख दिया है। अरुण उसे अजनबी सा लगने लगा। वीणा ने अरुण से अपनी दृष्टि हटा ली, फिर बाहर की ओर देखने लगी और उसे वही तारा फिर दिख गया। वह उसे और अधिक टिमटिमाता लगा, जैसे उस तारे ने आकाश के दो चार तारों का तेज चुराकर अपने आप को और अधिक आकर्षक बना लिया हो। वह तारा धीरे धीरे उसे आकार में बदलता दिखाई दिया। ओह, ये क्या? वीणा एकाएक उठकर बैठ गई, कुछ डरी भी, कुछ सहम सी गई। वह तो देव था। हां, देव सामने खिड़की में देख रहा था वीणा की ओर। वीणा, आवाज गूंजी देव की। वीणा कांपने लगी, उसकी आंखें स्वयं बहने लगी। तुमने शादी कर ली वीणा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। देव मुस्कुरा रहा था उसके सामने, कितना सुंदर, कितना आलौकिक रूप लग रहा था उसका। इस समय उसने वही कपड़े पहन रखे थे, सबसे सुंदर लगते थे जो उसे, सफेद उज्जवल सफारी सूट, जिसे हर अच्छे अवसर पर पहनने की वीणा ही जिद करती थी। देव के मुंह से मुबारक सुनकर वीणा मुस्कुराई नहीं, और अधिक आंसू बहने लगे उसकी आंखों से, ओंठ बुदबुदाए भी। देव का ही नाम, देव देव, वही मन ही मन उसका नाम लेने लगी। मेरे नाम से जुदा कर लिया अपना नाम वीणा, अब कोई नहीं कहेगा देव की वीणा, अब कोई नहीं कहेगा वीणा का देव। ये तुमने क्या किया वीणा? मैं तुम्हें अपने से अलग कैसे कर पाऊंगा? भूल गई क्या? तुम तो स्वयं कहती थी हमारा जन्म जन्म का साथ है, पिछले जन्म में हम मिले थे, इस जन्म में मिले हैं, और थोड़े से इंतजार के बाद मैं तुमसे आकर मिल जाऊंगी, ताकि अगले जन्म में फिर से मिल सके। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वीणा को लगा देव मायूस हो उठा है। नहीं नहीं देव, तुम मायूस ना हो, यह मायूसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तुम मुस्कुराओ, मैं तुम्हें कहां भूली हूं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। यह जग दिखावा है देव, यह दुनिया की रीति है। मैंने दुनिया से अपना पीछा छुड़वाया है, मैंने तुमसे अपना पिंड नहीं छुड़वाया। मैं तो तुम्हारी हूं, तुम्हें कैसे भूल पाऊंगी? मैं तुम्हें नहीं भूल सकूंगी कभी भी। और वीणा हल्के से सिसकने लगी, लेकिन अरुण ने उसकी सिसकियां नहीं सुनी। वह तो निद्रा में लीन था, उसकी वर्षों की प्यास मिटी थी और वह उसी से मदहोश हो गया था। वीणा कहां थी इस समय, इससे बेखबर। कुछ देर बाद वीणा ने फिर आंखें उठाकर देखा, देव वहीं खड़ा था खिड़की के बाहर, वीणा को ही देख रहा था। एकाएक वीणा उठी, खिड़की की तरफ गई, खिड़की के बाहर झांक कर देखा, वहां तो कुछ भी नहीं था। उसने खिड़की बंद कर दी, वहीं रखी कुर्सी पर बैठकर वह अरुण को देखने लगी। उसे याद आया हो जैसे कि देव तो अब कहीं नहीं, आज उसकी इस सामने सो रहे व्यक्ति से शादी हुई है, वह अब उसकी पत्नी है, देव से अब उसका कोई नाता नहीं, देव अब उसके लिए पिछले जन्म की कहानी बन गया है, इस नए जन्म से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन क्या यह सच है कि वह इस नए जन्म में देव को अपने मन से निकाल पाएगी? उसे अपने से किए इस प्रश्न का कोई उत्तर सुनाई नहीं दिया। कितनी चुप्पी से, कितनी सादगी से आज उसकी शादी हो गई अरुण से। उसे जैसे विश्वास नहीं आया। शादी तो कितनी धूम से होती है, कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, हर दिन मंगल गीत गाए जाते हैं, कितने सपने संजोती है लड़की। हां, सपने ही तो होते हैं वे सब। वीणा के लिए सभी कुछ स्वप्न रहा है। अभी तक उसने भी कभी कितनी खुशियां मनाई थी, उसके लिए भी मंगल गीत गाए गए थे, घर भर में हफ्ते भर तक ढोलक की थाप गूंजी थी। शादी के दिन से मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और वीणा स्वयं, वह स्वयं तो मदहोश थी। शादी के दिन ही नहीं बल्कि उस दिन से जब पहली बार उसने देव को देखा था। हां, देव कितना सुंदर था। वीणा को सामने देव दिखा अब अरुण की जगह, और उसकी आंखें वहीं कुर्सी पर बैठे मुंद गई। खो गई वह बीते दिनों में, देव के सहवास में, देव की यादों में, देव के साथ बीते पल पल में, जिसमें ढेर सी खुशियां भी थी, ढेर से गम भी थे, हंसी भी थी और आंसू भी थे। लेकिन इन सब से ऊपर उसे अपने जीवन की कितनी कीमत चुकानी पड़ी, उसका कोई हिसाब भी वीणा के पास ना था।